एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत। हम सब, आप जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो जुड़े ही हैं। दफ्तर है, कॉलेज है, कोई क्लब या फिर सरकारी विभाग भी।
ये हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है।
बिल्कुल, पर क्या हम सच में समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं? खासकर जब बात आती है हमारी अपनी भूमिका की, हमारे रोल की और संगठन के असली लक्ष्यों की, गोल्स की।
ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। अक्सर हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं, पर जो सतह पर दिखता है ना, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है।
हाँ,
आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे मैरी जो हैच के काम की।
मैरी जो हैच, हाँ, सुना है मैंने नाम। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में काफी बड़ा नाम है वो।
बिल्कुल, उनकी किताबें हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मॉडर्न सिम्बॉलिक एंड पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स। इन्होंने वाकई संगठनों को देखने का नजरिया बदला है। उनका, आप कह सकते हैं, मूल तर्क यही है कि भाई किसी एक चश्मे से आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते।
और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है, नहीं? जहाँ इतनी तेजी से सब बदल रहा है, भूमिकाएं बदल रही हैं, लक्ष्य कई बार साफ नहीं होते।
सही बात है।
तो हैच का तरीका, जैसा आप कह रहे हैं, वो हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग नजरियों से एक ही संगठन को देखकर उसकी जटिलता को बेहतर समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर।
हाँ, तो शुरुआत करते हैं मैरी जो हैच से ही। कौन है वो? वो वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मैकिंटायर स्कूल ऑफ कॉमर्स में प्रोफेसर एमेरिटा हैं, स्टैनफोर्ड से पीएचडी हैं और मतलब 3 दशक से ज्यादा से इस फील्ड में हैं, एक जानी मानी आवाज हैं।
और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, शायद बाहर भी पढ़ाया है उन्होंने।
जी हाँ, यूरोप में भी पढ़ाया है, वो किन्हेगिन बिजनेस स्कूल जैसी जगहों पर। तो उनके काम में एक ग्लोबल टच भी दिखता है।
लेकिन उनकी सबसे खास बात क्या है, मतलब क्या चीज उन्हें अलग बनाती है?
मेरे ख्याल से सबसे खास बात यह है कि जहाँ कई एक्सपर्ट्स किसी एक ही थ्योरी के पैरोकार बन जाते हैं, हैच बात करती हैं सैद्धांतिक बहुलवाद की, थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म।
सैद्धांतिक बहुलवाद, इसका मतलब?
इसका मतलब है कि वो मानती हैं कि संगठन इतने पेचीदा होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स, कि उन्हें समझने के लिए हमें एक नहीं, कई तरह के औजारों की जरूरत है, अलग अलग लेंस चाहिए, जिसे डॉक्टर नहीं करता, अलग अलग टेस्ट।
हाँ हाँ,
बस वैसे ही, अलग स्थिति के लिए अलग नजरिया। यही बात उनके काम को इतना मूल्यवान बनाती हैं। वो हमें सोचने के कई तरीके देती हैं, बिना ये कहे कि बस यही एक तरीका सही है।
अच्छा, तो उनकी किताबें फिर किस तरह की हैं? क्या वो कोई मैनेजमेंट गाइड टाइप की हैं कि ये 5 कदम उठाओ और सफल हो जाओ?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कैसे करें से ज्यादा कैसे सोचें पर जोर देती हैं। किताबें अकादमिक जरूर है, पर उनकी भाषा, उनका तरीका ऐसा है कि मैनेजर, छात्र या कोई भी जो संगठनों को गहराई से समझना चाहता है, उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। एक तरह का, कह सकते हैं, मेंटल टूलकिट देती हैं वो।
मेंटल टूलकिट, दिलचस्प। तो इस टूलकिट का सबसे बड़ा औजार क्या है फिर?
सबसे बड़ा औजार है उनका ये विचार कि संगठनों को समझने के लिए कम से कम 3 अलग अलग नजरिए जरूरी हैं। पहला, आधुनिकतावादी, जिसे मॉडर्निस्ट कहते हैं। दूसरा, प्रतीकात्मक व्याख्यात्मक, यानी सिंबॉलिक इंटरप्रेटिव। और तीसरा, उत्तर आधुनिकतावादी, यानी पोस्ट मॉडर्न।
3 अलग अलग नजरिए।
हाँ, और किताब हमें दिखाती है कि कैसे एक ही संगठन को इन 3 लेंसों से देखने पर उसकी बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। कभी वो एक तयशुदा मशीन जैसा लगता है।
अच्छा।
कभी एक जीती जागती संस्कृति जैसा। और कभी सत्ता के खेल का मैदान जैसा। ये हमें सिखाता है कि कैसे जो औपचारिक भूमिकाएं, यानी रोल्स हमें दिखते हैं, या जो घोषित लक्ष्य यानी गोल्स बताए जाते हैं, उनके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है।
ये तो वाकई बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इन 3 नजरियों को, इन लेंसों को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
हाँ।
शायद यही हैच के काम का कह सकते हैं दिल है। पहला कौन सा है?
हाँ बिल्कुल, पहला है आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। ये सबसे पारंपरिक नजरिया है और शायद सबसे आम भी। इसमें संगठन को देखा जाता है एक मशीन की तरह।
मशीन, जैसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन, मतलब सब कुछ तर्कसंगत, व्यवस्थित।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसी मशीन जिसे डिजाइन किया गया है कुशलता, एफिशिएंसी और साफ साफ लक्ष्यों, क्लियर गोल्स को पाने के लिए। यहाँ जोर किस पर होता है? औपचारिक संरचना पर, फॉर्मल स्ट्रक्चर पर, नियमों पर, प्रक्रियाओं पर। और एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं पर।
मतलब किसका क्या काम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, सब कुछ तय।
एकदम जॉब डिस्क्रिप्शन वाली बात। और लक्ष्य भी ऐसे जो मापे जा सकें, मेजरेबल हों, बिक्री बढ़ाना, लागत कम करना वगैरह। यहां माना जाता है कि अगर डिजाइन सही है, नियंत्रण सही है, तो संगठन अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा। मैक्स वेबर की नौकरशाही या फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब इसी सोच के उदाहरण हैं।
हाँ, ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। ज्यादातर बड़े संगठन शायद खुद को ऐसे ही देखते हैं, या कम से कम दिखाना तो जरूर चाहते हैं। पर क्या संगठन वाकई इतने सीधे साधे, इतने मशीनी होते हैं? क्या हमारी भूमिकाएं बस वही होती हैं जो लिखी होती हैं?
यहीं पर दूसरा नजरिया आता है, प्रतीकात्मक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, सिंबॉलिक इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव। ये कहता है कि रुकिए, संगठन सिर्फ चार्ट और नियम नहीं है, वो लोगों से बनते हैं।
लोगों से? कैसे?
उनकी आपसी समझ से, उनकी कहानियों से। वो चीजों को क्या मतलब देते हैं, उससे बनते हैं। यहां संगठन एक संस्कृति, कल्चर जैसा है, या फिर एक रंगमंच, थिएटर जैसा।
रंगमंच, थिएटर, मतलब यहां भूमिकाएं, रोल्स सिर्फ लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, हम एक्टर्स की तरह हैं।
बिल्कुल, यहां भूमिकाएं वो हैं जो लोग असल में निभाते हैं, जिस तरह से वो अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से उन्हें एक मतलब देते हैं। यहां संगठन का असली लक्ष्य शायद वो ना हो जो कागज पर लिखा है।
तो फिर क्या हो सकता है?
हो सकता है असली लक्ष्य वो हो जिसे कर्मचारी सब मिलकर महत्वपूर्ण मानते हों। यहां जोर अंदरूनी दुनिया पर है, साझा मान्यताएं क्या हैं, कहानियां कौन सी चलती हैं, प्रतीक क्या हैं, रस्में क्या हैं। कार्ल वेक जैसे विचारक हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ माहौल पर प्रतिक्रिया नहीं देते, हम अपनी समझ से उसे बनाते भी हैं। इनैक्टमेंट कहते हैं इसे।
अच्छा, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे दफ्तर में जो गपशप होती है, या चाय पर जो चर्चाएं होती हैं, या किसी बॉस का बात करने का खास अंदाज, या जिस तरह से लोग नियमों को थोड़ा इधर उधर करके अपना काम निकाल लेते हैं,
चारिक माहौल होता है, ये सब संगठन की असली संस्कृति दिखाते हैं। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि संगठन के पास संस्कृति होती नहीं, संगठन ही एक संस्कृति है।
वाह, संगठन ही एक संस्कृति है, ये नजरिया तो भूमिकाओं और लक्ष्यों के व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव पहलू को समझने में मदद करता है।
बिल्कुल
ठीक है। तो पहला नजरिया मशीन जैसा, तर्कसंगत, दूसरा संस्कृति जैसा, व्यक्तिपरक। अब तीसरा क्या है, वो इन दोनों से कैसे अलग है?
तीसरा है उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ये थोड़ा और गहरा जाता है और सवाल उठाता है, ये पहले दोनों की आलोचना भी करता है। ये कहता है कि देखो, संगठन न तो पूरी तरह तर्कसंगत मशीनें हैं, न ही पूरी तरह एक जैसी संस्कृतियां।
तो फिर क्या है?
वो अक्सर खंडित होते हैं, फ्रैगमेंटेड होते हैं, उनमें विरोधाभास भरे होते हैं, और वो शक्ति संघर्षों, पावर स्ट्रगल्स के अखाड़े होते हैं। यहां संगठन को देखा जाता है एक पाठ की तरह, या एक कोलाज की तरह, जिसे कई तरह से पढ़ा जा सकता है, जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं।
शक्ति संघर्ष,
सिया,
पावर स्ट्रगल्स, मतलब यहां भूमिकाएं और लक्ष्य ये सब सत्ता के खेल से तय होते हैं।
काफी हद तक ये नजरिया इस बात पर बहुत ध्यान देता है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है, शक्ति समीकरण बनाने में किसकी आवाज सुनी जाती है, किसकी दबा दी जाती है, जो नीतियां बनती हैं वो किसके फायदे के लिए बनती हैं। यहां भूमिकाएं सिर्फ काम नहीं है, वो शक्ति संबंधों का प्रतीक भी बन जाती है। लक्ष्य अक्सर साफ नहीं होते, अस्पष्ट होते हैं, और अलग अलग ग्रुप उनकी अपनी अपनी व्याख्या करते हैं अपने फायदे के लिए। यहाँ मिशेल फूको जैसे विचारकों का काफी प्रभाव दिखता है।
फूको, हाँ, उनका शक्ति और अनुशासन पर काम।
वही, वो बताते हैं कि शक्ति सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आती, वो व्यवस्था में, नियमों में, टेक्नोलॉजी में, निगरानी के तरीकों में, हर जगह रची बसी होती है।
तो ये नजरिया हमें संगठन की जो छिपी हुई राजनीति है, जो असमानताएं हैं, उनको देखने में मदद करता है। जैसे ये सवाल करना कि जो लक्ष्य बताए जा रहे हैं, क्या वही असली लक्ष्य है, या उनके पीछे कोई और एजेंडा है।
बिल्कुल।
या किसी की भूमिका सिर्फ उसके काम से तय होती है, या उसके जेंडर, जाति, या उसके कनेक्शन से भी तय होती है।
बिल्कुल, यह हमें पर्दे के पीछे देखने के लिए उकसाता है। यह पूछता है कि जिसे हम सामान्य मान लेते हैं या कुशल मान लेते हैं, वो किसके नजरिए से है, क्या वो सबके लिए वैसा ही है।
ये तीन लेंस तो वाकई बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्हें हम संगठन के जो अलग अलग हिस्से हैं उन पर कैसे लागू कर सकते हैं, जैसे संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर, या फिर संस्कृति, कल्चर, इनको इन तीनों नजरियों से कैसे देखा जा सकता है?
हाँ, ये अच्छा सवाल है। चलिए संरचना, स्ट्रक्चर को ही देखते हैं। जो आधुनिकतावादी है वो इसे देखेगा कुशलता के औजार की तरह। सही ढांचा बनाओ, लक्ष्य पाओ, भूमिका एकदम स्पष्ट, अधिकार तय।
और चार्ट वाला नजरिया?
बिल्कुल। अब प्रतीकात्मक वाला क्या कहेगा? वो कहेगा कि संरचना सिर्फ ढांचा नहीं है, ये एक प्रतीक भी है। ऑक चार्ट शायद सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि देखो हम कितने प्रोफेशनल हैं, भले ही असल काम अनौपचारिक बातचीत से होता हो। यहाँ भूमिकाएं लचीली होती हैं, लोग उन्हें अपने हिसाब से ढालते हैं।
अच्छा।
और उत्तर आधुनिकतावादी, वो पूछेगा ये संरचना किसे फायदा पहुंचा रही है, कौन ऊपर है कौन नीचे, क्या ये किसी तरह की असमानता को छुपा रही है, क्या भूमिकाएं सिर्फ काम है या शक्ति दिखाने का जरिया भी है।
दिलचस्प। और संस्कृति, कल्चर के बारे में क्या, उसे कैसे देखेंगे ये तीनों?
अच्छा, संस्कृति को देखें। आधुनिकतावादी सोचेगा कि संस्कृति को मैनेज किया जा सकता है, उसे लक्ष्यों के मुताबिक ढाला जा सकता है, जैसे टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चलाना।
हाँ, होता है ऐसा।
फिर प्रतीकात्मक नजरिया, उसके लिए तो संस्कृति ही संगठन का सार है, उसे मैनेज नहीं करना, उसे समझना है अंदर से। यहां लक्ष्य शायद संस्कृति को बनाए रखना या उसे व्यक्त करना ही बन जाता है। और उत्तर आधुनिकतावादी, वो सवाल करेगा क्या वाकई कोई एक संस्कृति होती भी है, या ये बस मैनेजमेंट की एक विचारधारा है जो असहमति को दबाने का काम करती है। क्या अलग अलग टीमों, अलग अलग स्तरों पर अपने अपनी उप संस्कृतियां नहीं होती जिनके लक्ष्य शायद आपस में टकराते हों?
हाँ, ये तो है, अक्सर ऐसा दिखता भी है।
तो आप देख सकती हैं कि कैसे एक ही चीज, चाहे वो संरचना हो या संस्कृति, इन तीनों लेंसों से बिल्कुल अलग दिखती है। और ये हमें भूमिकाओं और लक्ष्यों की जो बहुस्तरीय प्रकृति है उसे समझने में मदद करता है।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना हो, कुछ की टेकअवेज?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे अहम संदेश तो यही है, एक नजरिए से काम नहीं चलेगा। संगठनों की जटिलता को समझने के लिए कई नजरिए, कई लेंस जरूरी हैं। कोई एक जवाब या एक तरीका काफी नहीं है, हमें दिमागी तौर पर लचीला होना पड़ेगा,
फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात शायद ये कि संगठन सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, वो सामाजिक और राजनीतिक अखाड़े भी हैं। उनमें लॉजिक के साथ साथ भावनाएं, रिश्ते और हाँ, शक्ति का खेल भी चलता है।
बिल्कुल।
भूमिकाएं सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती और लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होते, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ हमारा पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल जीवन इतना घुला मिला होता है। ये बात तो और भी ज्यादा मायने रखती है ना।
सही कहा। और तीसरा संदेश, वास्तविकता या सच्चाई जो है वो अक्सर आपसी समझ से बनती है। जिसे हम संगठन की सच्चाई मानते हैं वो काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि लोग उसे क्या मतलब देते हैं, कौन सी कहानियां सुनाते हैं, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं। इसे सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और चौथा?
चौथा कि शक्ति सिर्फ बॉस की कुर्सी में नहीं होती, वो नियमों में छिपी हो सकती है, भाषा में हो सकती है, यहाँ तक कि ऑफिस का डिजाइन कैसे किया गया है उसमें भी हो सकती है। उसे पहचानना जरूरी है, खासकर जब हम अपनी भूमिका या दूसरों की भूमिकाओं को समझने की कोशिश कर रहे हों।
हेज के काम में कई गहरे विचार हैं। अगर हम सीधे उदाहरण न भी लें तो कुछ मूल विचार, कोर आइडियाज, बहुत यादगार हैं।
हाँ, जैसे एक विचार है, संगठन स्थिर चीजें नहीं है, वे निरंतर प्रयासों से चलने वाली उपलब्धियां हैं।
मतलब संगठन कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो बस रखी हुई है, वो रोजाना लोगों के काम करने से, बातचीत करने से बनते रहते हैं, जिंदा रहते हैं,
एक सतत प्रक्रिया है। और दूसरा विचार?
दूसरा, आप संगठन में क्या देखते हैं ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन सा चश्मा पहने। हमारा सैद्धांतिक नजरिया, हमारा लेंस हमारी धारणा को आकार देता है। अगर आप सिर्फ मशीन वाला चश्मा पहनेंगे तो आपको इंसान और संस्कृति शायद दिखेंगे ही नहीं।
हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। और तीसरा?
तीसरा जो हमने पहले भी कहा, संस्कृति वो नहीं जो संगठन के पास होती है, संस्कृति वो है जो संगठन होता है। ये प्रतीकात्मक नजरिए का सार है। संस्कृति कोई ऊपर से लगाई हुई चीज नहीं, वो संगठन का डीएनए, उसकी पहचान है।
ये विचार वाकई हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम संगठनों को कितनी गहराई से समझते हैं या शायद कितना सतही तौर पर देखते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इन सब बातों का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, मैनेजरों और नेताओं के लिए तो ये बहुत ही काम का है। सोचिए, अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई नई परफॉर्मेंस रिव्यू प्रणाली लागू करना चाहते हैं,
ठीक है,
अब अगर आप सिर्फ आधुनिकतावादी लेंस से सोचेंगे तो आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, लक्ष्य कैसे मापेंगे इस पे। लेकिन प्रतीकात्मक लेंस आपको याद दिलाएगा, अरे कर्मचारी इसे सिर्फ एक फॉर्म की तरह देखेंगे या अपनी पहचान पर हमले की तरह। क्या इससे टीम का माहौल खराब होगा? जो पहले से अनौपचारिक तरीके चल रहे थे उनका क्या होगा?
हाँ, ये भी सोचना होगा।
और उत्तर आधुनिक लेंस सवाल उठाएगा, क्या ये नई प्रणाली कुछ लोगों को ज्यादा ताकत देगी? क्या इससे निगरानी बढ़ेगी? क्या जो बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस सुधारना लक्ष्य है, क्या वही असली लक्ष्य है या कुछ और?
अच्छा,
तो अगर आप तीनों नजरियों से सोचेंगे तो आप एक बेहतर योजना बना पाएंगे, संभावित समस्याओं को पहले ही बांप लेंगे, आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।
ये तो हुई मैनेजरों की बात, और जो कर्मचारी हैं उनके लिए इसका क्या फायदा?
कर्मचारियों के लिए भी ये अपनी भूमिका, अपने रोल को और दफ्तर की जो अंदरूनी राजनीति होती है उसे समझने में बहुत मददगार है। आप समझ सकते हैं कि क्यों कुछ फैसले आपको तर्कहीन लगते हैं या क्यों बॉस ने जो कहा उसका असल मतलब शायद कुछ और था। ये आपको ज्यादा जागरूक बनाता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका अपना लक्ष्य, आपका पर्सनल गोल, संगठन के घोषित लक्ष्य ऑफिशियल गोल से या फिर टीम के जो अनकहे लक्ष्य होते हैं इम्प्लिसिट गोल, उनसे कैसे जुड़ता है या कहाँ टकराता है।
तो एक तरह से ये हमें ज्यादा समझदार बनाता है और शायद ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण भी। हम समझ पाते हैं कि लोग अलग अलग तरह से क्यों सोचते हैं, क्यों व्यवहार करते हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये हमें उस सोच से बचाता है कि एक ही समाधान सब पर फिट हो जाएगा, जो कि संगठनों में अक्सर फेल हो जाता है।
तो इस गहरी चर्चा के अंत में सबसे बड़ा सबक क्या है जो हम मैरी जो हेच के काम से ले सकते हैं? फाइनल टेक अवे।
संगठन जटिल होते हैं, उनमें कई परतें होती हैं, उन्हें समझने के लिए दिमागी लचीलापन चाहिए। हमें यह मानना होगा कि वो सिर्फ लॉजिक से नहीं चलते, उनमें भावनाएं, मतलब और हाँ शक्ति का खेल भी होता है।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा नजरिया ही काफी हद तक हमारी हकीकत पे करता है। ये जानना कि हम कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ज्यादा प्रभावी बनाता है, और ये याद रखना कि संगठन इंसानों ने बनाए हैं और इंसान उन्हें बदल भी सकते हैं अगर हम उनकी जटिलता को सही मायने में समझें।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ,
उस संगठन के बारे में सोचिए जिससे आप रोज जुड़ते हैं, आपका दफ्तर, कॉलेज या कोई भी संस्था। अगर आप अपनी भूमिका को, अपने रोल को और उस संगठन के लक्ष्यों को, गोल्स को इन तीन लेंसों से देखें, मशीन, संस्कृति और शक्ति के अखाड़े वाले लेंस से, तो क्या आपकी समझ में कोई फर्क आता है? क्या आपको कुछ ऐसा दिखता है जो पहले नजर नहीं आया था? जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।